प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशियल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्रायः कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अपना अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कूले की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। किंग्सले डेविस का कहना है कि कई बार आमने सामने के संबंधों के पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता। आपने बतलाया है कि एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है, उसे सलाम करता है। इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी ये संबंध प्राथमिक संबंध नहीं होकर यांत्रिक संबंध हैं। ऐसे ही आलोचना पेरिस ने भी की है। वे कहते हैं कि न्यायालय में अपराधी, न्यायाधीश, वकील एवं गवाह आमने सामने होते हैं, किंतु उन्हें प्राथमिक संबंधी नहीं कहा जा सकता। डेविस का मत है कि हम की भावना तो बड़े बड़े द्वितीयक समूहों में भी पाई जाती है, अतः इन विशेषताओं के आधार पर किसी समूह को प्राथमिक समूह कैसे कहा जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कूले ने प्राथमिक समूह के इन दो विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया है। उदाहरण के रूप में आपने संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, संबंधों की घनिष्ठता तथा वैयक्तिक संबंधों को प्राथमिक समूहों की आवश्यक विशेषताओं के रूप में माना है। यहाँ कोजर एवं रोजनबर्ग का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने बतलाया है कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार आदि प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएँ हैं। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। लुंडबर्ग प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि एक प्राथमिक समूह का जिसमें दो से लेकर 50 या 60 लोगों के, अर्थात एक छोटी संख्या के अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में न कि किसी विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्तियों के रूप में रखते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किम्बाल यंग लिखते हैं कि प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्रबिंदु हैं जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विकसित होता है। अलेक्स इंकल्स के अनुसार प्राथमिक समूहों के सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं, जिनमें व्यक्तियों में आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। प्राथमिक समूह के उदाहरण, कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह एवं पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। मैकाइवर व पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को इस श्रेणी में रखा है। तो डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी समूह के प्राथमिक समूह कहलाने के लिए कुछ भौतिक या आंतरिक विशेषताओं का होना आवश्यक है। यहाँ सर्वप्रथम हम भौतिक विशेषताओं पर विचार करेंगे। प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताएं। यदि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर जोर दिया है, लेकिन अपने ऐसे संबंधों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत नहीं की है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए तीन आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया है जो अग्रलिखित हैं। नंबर एक, शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकें। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने, साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ पढ़ने तथा बातचीत करने से उनमें विचार तथा भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो जाता है। निकट संपर्क करने से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग उत्पन्न होते हैं। नंबर दो, समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होगा सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंतःक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के छोटे आकार का होने से ही सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यों में घनिष्ठता विकसित हो सकती है। नंबर तीन, संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहारों से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं और जो संबंधों में घनिष्ठता के लिए जरूरी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार तथा संबंधों की लंबी अवधि का होना आवश्यक है। इस संबंध में डेविस ने लिखा है कि भौतिक निकटता, छोटा आकार और लंबी अवधि घनिष्ठ संबंधों के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां हैं। यह संभव है कि इनमें से कोई एक स्थिति अन्य दो की अनुपस्थिति में भी विद्यमान हो, लेकिन प्राथमिक समूह के विकास की सबसे अधिक अनुकूल अवस्था तभी प्रकट होती है जबकि ये तीनों दशाएं उच्च मात्रा में पाई जाती हों।